ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਨਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋ। ਆਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਆ ਜਾਈ ਹੈ। ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੂਪਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮੀਨੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਟਾਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਕੇ ਡਵਿੰਡਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬੜਾ ਏਜਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅਬ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਸ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਭੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਤੋ ਹਮੇ ਯੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਟਸ ਜੋ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਕੀ ਰੈਡੀਨੈਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੈਡੀਨੈਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਉਸਮੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋ ਕਹਤੇ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਆਫ ਨੇਟੋ, ਤਮਾਮ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਆਪਣੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਕੇ ਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਯੇ ਜੋ ਹਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਯੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਹਮੇ ਤਿਆਰ ਇਸਮੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਯੇ ਬਾਤੇਂ ਉਨ੍ਹੇ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੇਂ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਵੇਨ ਆਇਰ ਜੋ ਹੈ ਉਨਸੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਆਪ ਕਾ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਵੋ ਹਮਕੋ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੇ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਜਨਰਲ ਆਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਥਾ, ਔਰ ਉਨ੍ਹੇ ਕਹਾ ਥਾ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਟਰੂਪਸ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਹੈ, ਯੇ ਉਨ੍ਹੇ ਸਿਮਿਲਰ ਬਾਤੇਂ ਕਹੀ ਥੀ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਅਗਰ ਆਪ ਯੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੋ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਫਿਰ ਹਮ ਕਿਧਰ ਖੜੇ ਹੋਗੇ। ਤੋ ਜਨਰਲ ਆਇਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਾ ਥਾ, ਹਮ ਤੋ ਬਲਕਿ ਰੈਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾਏ ਜਾਏ, ਤੋ ਆਪ ਇਸਕੋ ਵੀ ਕਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹਮਾਰੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਮਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸਕੋ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ।
ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਥਾ ਹਮਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ,
ਸਾਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ, ਇਸੀ ਲਈ ਅਸਲ ਮੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸੀ ਕਾ ਅਫਸੋਸ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਜੋ ਅਬ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੋੜਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਬ ਯੇ ਅਭੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੋ ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਕਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਯੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਥਾ, ਜੋ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਜਿਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹੋਂ ਕਹਾ ਥਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ ਤੋ ਯੂਕਰੇਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੇਟੋ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੇਟੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਥਾ ਜੀ ਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਔਨ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਆਜ ਜੋ ਪੁਟਿਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਯੇ ਆਜ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਮਾਸਕੋ ਕੇ ਗੋਸਟਿੰਗ ਯੇਅਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਮੇ ਉਨ੍ਹੋਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਨੇਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸਿਸ ਯੂਕਰੇਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਦਿਆ, ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸਕੋ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਸਮਝਾ ਜਾਏ, ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਰੈਡੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੇ ਕੀਆ ਯੇ ਹਰਕਤ ਕੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨੇਟੋ ਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਭੇਜੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਐਕਚੁਲੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ। ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ, ਜਿਨਕੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਆ ਥਾ 2018 ਮੇਂ, ਵੋ ਫੁਲੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਹਮੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸਕੇ
ਮਗਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਵੀ ਕਹਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਇਸਮੇ ਹਿੱਸਾ ਲੇਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਕੇ ਟਰੂਪਸ ਭੇਜੇਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰੂੰਗਾ।
ਹਾਂ, ਵਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਯੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਬ ਆਪ ਇਸਕੋ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਤੋ ਨਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤੋ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ 30,000 ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਕੋ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਰੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਮੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਮਕੋ ਕੈਸੇ ਮਨਾਊ ਪੀ ਆਪ, ਉਸਕੋ ਕੈਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਕੋ, ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ, ਤੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋਤਾ ਪਿਆ। ਆਜ ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੀ ਫੂਡ ਏਡ ਕੇ ਲੀਏ, ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੂਡ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲਾਈਨੋ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਨਕੇ ਉਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਆ, ਔਰ ਉਸਮੇ 112 ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ 760 ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਏਡ ਚੀਫ ਮਾਰਟਿਨ ਗ੍ਰਿਫਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਕਿ 30,000 ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਡ ਸੀਕਰਸ ਵੀ ਥੇ। और एड सीकर्स के साथ साथ एड देने वाले भी थे। तो जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस के भी बंदे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, उनके डॉक्टर्स होते हैं फलाने, तो वो कहते हैं जी कि ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। इसराइल ने जो अभी अटैक किया है उसके अंदर, जो आज की बात है उसके अंदर उन्होंने और जो अटैक्स, उसमें 30 जो अटैक्स हैं वो नसीरत और बुरेजी और खान यूनस के इलाकों में किया है। इसके अंदर 6 बच्चों की डेथ हुई है और 6 बच्चे जो हैं, कैन यू इमेजिन की हालत इतनी खराब है कि डिहाइड्रेशन से उनकी डेथ्स हुई हैं इन कमाल अदवान एंड अल शिफा हॉस्पिटल्स, और उनको ड्रिप्स नहीं थी उनको देने के लिए। वो कहते हैं जी कि 70,457 आर बैडली हर्ट इन इजरायली अटैक्स सिंस अक्टूबर 7, और इसके ऊपर आज जो ये जो अटैक किया है एड सीकर्स के ऊपर, जो फूड एड सीकर्स के ऊपर, उस पर आज बाइडन साहब से रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाईजान आपको इस बात का पता है कि नहीं पता है, तो भाईजान ने कहा जी कि बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन इसके ऊपर 2 डिफरेंट वर्जन हैं, इसराइल कुछ और कह रहा है, पैलेस्टाइन कुछ और कह रहा है। जाहिर है पायान फिर इसराइल दी थी गल मननी मननी है ना, तो अब सारी दुनिया की एड्स जो हैं एजेंसीज वो कह रही हैं इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग आज की है। फूड एड जो का जो कॉन्वॉय था उसके ऊपर जो बच्चे और लोग खड़े थे उस पर, तो बारह कहते हैं जी मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाऊंगा। जॉर्डन और इजिप्ट जो है जाहिर है कि उन्होंने इसको बड़ा ज्यादा कंडेम किया और उन्होंने कहा जी कि इंतहाई इनह्यूमन इजरायली अटैक है, मतलब इससे पहले जो अटैक है वो इनह्यूमन नहीं है, वो भी है। इसके साथ साथ लेकिन अब जो वॉर का दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज जो यमन के हूथी हैं उन्होंने एक दफा फिर से प्रॉमिस किया और उन्होंने कहा जी कि जब तक ये गाजा के अंदर वॉर नहीं रुकेगी हम ऐसे ही अटैक करते रहेंगे रेड सी के अंदर जो इनके वेसल्स हैं। सीनियर हिजबुल्ला पॉलिटिशियन हसन फदल्ला ने भी उन्होंने कहा कि ये जो अब फ्रंट लेबनान के ऊपर खुल गया है ये भी खुला रहेगा जब तक एक गाजा के अंदर वॉर जो है वो बंद नहीं होएगी। तो अब वॉर तो बढ़ती चली जा रही है जनाब, तो क्या करेंगे अब इसके ऊपर। आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज जो हैं उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है उनके मुल्क में, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया है जिसके के बारे में कहा गया है कि यूके की जो फोर्सेस हैं जो कि एड दे रही थी यूक्रेन को उसको आपने एक्सपोज कर दिया है, जो कि विद इन द यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है उसमें रहना चाहिए था। उन्होंने कहा जी कि जर्मनी जो है वो जो यूक्रेन है उसको टॉरस मिसल्स नहीं देगा, जो कि जाहिर है कि बर्लिन का बड़ा जबरदस्त हाई एंड स्टॉर्म शैडो मिसल सिस्टम है, और उन्होंने रेफर किया, उन्होंने कहा कि जैसे यूके और फ्रांस जो है एड कर रहा है। अब लोगों की आंखें इस पे खुल गई कि भाई यूके और फ्रांस क्या दे रहा है उसको। उन्होंने कहा जी कि हम जर्मन फोर्सेस जो हैं सोल्जर्स उनको तो अलाउ नहीं करेंगे यूक्रेन में भेजना जैसे कि यूके और फ्रांस वाले जो हैं वो कर रहे हैं। अब इसके ऊपर और फिर क्वेश्चन उठे, तो उन्होंने कहा जी कि भाई ये बीच बीच में से क्वाइटली क्या किया जा रहा है, तभी तो फिर इसका मतलब है कि वॉर तभी ठंडी नहीं पड़ रही है वहां पे। टोबियस एलवर्ड जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कॉमन्स डिफेंस कमेटी हैं उन्होंने इसके ऊपर कहा जी कि ये बहुत ही जो गैर मुनासिब किस्म का इनका स्टेटमेंट था ओलाफ साहब का, और इसको यूज करते हुए रशिया जो है अब चीजों को और एस्केलेट करेगा। और जर्मनी के अंदर खुद भी शोल्ज साहब जो हैं उनको बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप और एड दें यूक्रेन को, लेकिन जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि अब जितनी हम दे रहे हैं उससे ज्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि लोग जर्मनी में कहते हैं कि अगर रशिया को रोकना है तो आपको अपने एडवांस वेपन्स देने पड़ेंगे। तो ये आज काफी जो है यूरोप के अंदर ओलाफ शोल्ज साहब को आज किया गया क्रिटिसाइज। एसोसिएटेड प्रेस की ये खबर है जी, और इसके मुताबिक जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इटली के उन्होंने कहा जी कि जब पुलिस जो है वो बैटन्स यूज करती है बच्चों के ऊपर स्कूल स्टूडेंट्स पे, तो वो इसमें ये समझा जाता है कि वो जो है पुलिस वाले उन्होंने अपनी डिफीट कबूल कर ली है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, खासतौर पे छोटे स्कूल के बच्चों को, उसके अंदर इनको बैटन जो है यानी कि इनको डंडे से मारना जो है वो नहीं चाहिए था। ये न्यूज आई थी कि जी ये जो है फ्लोरेंस और पीजा के एरिया जो है वहां पे बच्चे निकले थे प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट करने के लिए, और उनको हटाने के लिए, उन डेमोन्स्ट्रेशन को हटाने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर बैटन चार्ज किया, जिसकी के वजह से 17 बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा जख्मी हुए, जिसमें से 11 जो थे वो माइनर्स थे। तो ये इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं इटली के मैटियो पाइटेडोसी उन्होंने कहा जी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उन्होंने उस वक्त रिएक्ट किया जब ये डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे पुलिस बैरियर्स को तोड़ के आगे आ रहे थे और पुलिस वालों को मुक्के और किक्स मार रहे थे और ठुड्डे मार रहे थे और उनके ऊपर स्पिट कर रहे थे और उनकी शील्ड्स जो है रिमूव कर रहे थे, तो फिर पुलिस ने जो है उनके ऊपर बैटन चार्ज किया, तो इसलिए ये ऐसे हुए। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि इंग्लैंड तो अब इंग्लैंड लगता नहीं है, यहां पे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि मॉब रूल है, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है ये जब से इसराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद। आज पुलिस की एक मीटिंग से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हमारे मुल्क में बेतहाशा वायलेंस बढ़ गई है और बहुत ज्यादा इंटिमिडेटरी बिहेवियर लोगों का हो गया, यानी कि लोग जो है दूसरों को बहुत ज्यादा इंटिमिडेट कर रहे हैं। आपको पता ही, हमने आपको कुछ दिन पहले खबर सुनाई थी कि इनके बहुत सारे एमपीज जो हैं उनको अब एंटी पैलेस्टाइन वो स्टांस होने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसी की तरफ ये कर रहे थे, रेफर कर रहे थे सुनक साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके अंदर हम फ्री डिबेट्स नहीं कर सकते और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। ये जो मॉब रूल है ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मूव करता है और इसको हमको कलेक्टिवली चेंज करने की जरूरत है। अब इसके ऊपर जो राइट्स ग्रुप्स वाले हैं वो भड़क गए हैं। टॉम साउदर्डन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ हैं, उन्होंने कहा जी कि सुनक साहब ने ये जो जुमला इस्तेमाल किया है कि इंग्लैंड में मॉब रूल है, ये मॉब रूल जो है ये बड़ा एग्जेजरेट करके इन्होंने पेश किया है और ये रिस्क करता है टू डी लेजिटिमाइज राइट्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि अगर किसी भी जो प्रोटेस्ट निकल रहा है उसको ये मॉब रूल बोलेंगे तो फिर लोग जो हैं अपना पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकेंगे, विच इज अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर लोगों को इजाजत होती है कि वो अपना पीसफुल असेंबली कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये दोनों तरफ से इस तरह के आए हैं। आयरलैंड जो है जी उसने कल बड़ा यूनानिमस एक वोट किया था और उसने कहा है कि हम कंप्लीट सैंक्शंस इम्पोज करने हैं इसराइल के ऊपर, और उन्होंने यूएस को भी कहा है कि हमारी एयर स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, आपने अगर कोई वेपन्स भेजने हैं इसराइल को तो वो। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमको एक आर्म्स एम्बार्गो लगाने की जरूरत है इसराइल के ऊपर। सैन फ्रांसिस ब्लेक जो है सेनेटर वो ये मोशन लेकर आए थे और उनके साथ दूसरे सेनेटर्स जो थे वो थे लिन रुएन, एलिस मैरी हिगिन्स और अलीन फ्लिन। उन्होंने कहा जी कि आयरलैंड को फौरन इसराइल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहना चाहिए कि वो फौरन सीज फायर की तरफ जाएं गाजा के अंदर, क्योंकि इतने लोगों की डेथ्स वहां पे हो चुकी हैं। उन्होंने कहा जी कि हम बैन लगाना चाहते हैं जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इसराइल, क्योंकि खासतौर पर जो उनके सेटलर्स हैं, सेटलमेंट्स जो वो कर रहे हैं उनसे और उनकी जो वहां की सेटलमेंट्स की कंपनीज हैं उनके साथ हमको बिल्कुल कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। सेनेटर्स ने कहा जी कि हमें बड़ा अफसोस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये इसराइल के लिए कुछ नहीं कर रही, हालांकि ये कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच कर रहा है। उन्होंने कहा जी उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ बड़े जो कंट्रीज है जैसे कि यूएस, यूके और जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है वो बिल्कुल सीज फायर की तरफ नहीं जा रही है और ना ही ये जो है सेल ऑफ वेपन्स टू इसराइल जो है वो बंद कर रही है। आपको बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का में जो वो लेकर गया था सारा मुद्दा साउथ अफ्रीका, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमें लग रहा है कि इसराइल जीनोसाइड कर रहा है इसमें गाजा में, तो उसके बाद जो स्पेन और इटली और बेल्जियम और नेदरलैंड्स और जापान की बहुत सी कंपनियों ने सस्पेंड कर दिए थे अपने वेपन्स ट्रांसफर टू इसराइल। आयरलैंड जो था दैट बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन का कंट्री टू डिक्लेयर इसराइली सेटलमेंट्स टू बी डिफेक्टो एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट्स। उसने कहा जी कि ये बिल्कुल पैलेस्टीनियन स्टेट्स को तोड़ रहा है, काट रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा था जी कि 1980 में भी आयरलैंड ने बड़ी हिस्ट्री बनाई थी जब इट बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन जो है वो कंट्री जिसने के कहा था कि एक आजाद पैलेस्टीनियन स्टेट होनी चाहिए। तो आयरलैंड ने आज फिर जो है वो बड़ी लीड ली है इसमें, इस चीज के अंदर। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबोब। आपको पता ही है कि नान एंड कबोब में बड़े अच्छे खाने मिलते हैं जो कि हर कोई एंजॉय कर सकता है, हर एज का बंदा और हर एथनिसिटी का भी, क्योंकि बहुत ही मुनासिब इनके जो है वो मसाले वगैरह होते हैं। इनका जो अभी खुला है कुछ अरसा पहले नया आउटलेट, ये 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट F3 मिसिसागा, आउटलेट नहीं रेस्टोरेंट जो खुला है वो, उस पर आप जरूर जाएं। इनका नंबर है 9052829797। ओके जी, पाकिस्तान के अंदर आज 16th नेशनल असेंबली जो है उसका इनॉग्रेशन सेशन था। इसमें जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे उसको ओथ दिया गया। नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने 302 मेंबर्स को ओथ दिया जो कि मोस्टली पीपीपी, पीएमएलएन, पीटीआई, जेयूआईएफ और दूसरे पोलिटिकल पार्टी से थे। यहां पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, बीबी जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी ओथ लिए हैं। जिस वक्त नेशनल एंथम खत्म हुआ तो उसके बाद पीटीआई के जो लॉ वर्कर्स हैं उन्होंने काफी यहां पे शोरगुल मचाया कि ये स्टोलन मैंडेट है। आपको पता ही है कि पीटीआई के लॉ मेकर्स ने ज्वाइन किया है सुन्नी इतिहाद काउंसिल को, तो वो सारे जमा हो गए स्पीकर के डाइस के पास, उन्होंने कहा जी कि एक प्रोब इसके ऊपर बिठाने की जरूरत है। पीटीआई बैक्ड जो बाबर सलीम सवाती हैं, उन्होंने आज ओथ लिया है केपी असेंबली के स्पीकर के लिए। उनको 89 वोट्स मिले, पीपीपी के एहसानुल्लाह खान को 17। इसके अलावा मौलाना ने कहा जी कि हमने अब तो हिस्सा ले लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और नेशनल असेंबली के स्पीकर के जो इलेक्शन होंगे उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। इसके साथ साथ पीएमएलएन के अब्दुल खालिक अचकजई और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला, इनको इलेक्ट किया गया है अनअपोज बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। और अब जो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग होगी वो मार्च 3 को होगी, तो उसमें आप कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा अब ये देखना है। पीटीआई के नेशनल असेंबली की जो लॉ मेकर हैं शंदाना गुलजार, जो कि आज थी ओथ ले रही थी, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट को काम करने देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि यूएस परमिट करेगा इनको फंक्शन करने के लिए। शंदाना ने NA30 Peshawar 3 की सीट जो थी वो जीती थी। उन्होंने कहा जी कि हम पार्लियामेंट का बिजनेस जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं। और वो कहते हैं जी कि जिस वक्त मैं इलेक्शन ट्रेल पे थी तो बहुत सारे लोकल इंडिविजुअल्स ने मुझे ब्राइब्स देने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है कि अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उन लोगों के नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। इसके साथ साथ एमक्यूएम ने डिमांड की थी 4 मिनिस्ट्रीज पीएमएलएन से, जो कि अब लग रहा है कि उनको नहीं दी जाएंगी। उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे सेंटर में, और इसके साथ साथ हमें सिंध गवर्नर की सीट भी दी जाए, लेकिन अब रिपोर्ट्स यही आई हैं कि पीएमएलएन नहीं माना है, जिसके लिए एमक्यूएम ने कहा था कि हम आपके लिए एग्री तो करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के जब पीएम के इलेक्शन होंगे और रियाज सादक के नेशनल असेंबली के स्पीकर के लिए, लेकिन हम आपको प्रेसिडेंट और सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे। एएनपी के प्रेसिडेंट जो हैं वली खान साहब, उन्होंने आज कहा है जी कि हम सवात के अंदर 8 मार्च से जो है वो अब मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि ये जो बेतहाशा मैसिव रिगिंग की गई है और जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है उसको जो है बिल्कुल हम नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी की पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब ने भी कहा है कि ये रिग्ड और कंट्रोवर्शियल पोल्स थे, और मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये झूठे वादे से जीत के अपने मुंह पे झूठी और फेक स्माइल्स इन्होंने कैसे लगाई हुई हैं। ये झूठी गवर्नमेंट जो है ये लोगों के इश्यूज ना रिजॉल्व कर सकेगी, ना इन्फ्लेशन को नीचे ला सकेगी। और मैं लेकिन ये अश्योर करना चाहता हूं नेशन को कि ये आखिरी जो नेशनल मैंडेट था चोरी किया गया है और हाईजेक किया गया है। जेआई कराची के अमीर जो हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है एमक्यूएमपी पे जो कह रहे हैं जी कि हम जीते हैं ये इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फेक फॉर्म 47, जो फॉर्म 45 है उसमें तो कोई और लोग जीते हुए हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे बैलेट बॉक्सेस ही उठाकर ले गए थे इलेक्शन से पहले और अपने मर्जी के उन्होंने उसके अंदर वोट डाले हैं, फिर भी ये हारे थे। इसके साथ साथ पीटीआई के जो मोहम्मद शोएब शाहीन, जिनको के कहा गया कि जी आप केपी के अंदर तो इलेक्शन मान रहे हैं और बाकी मुल्क में कह रहे हैं कि अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी नहीं करने देंगे और उसको हम मानेंगे नहीं, तो उन्होंने आज उसके ऊपर कहा जी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर आप स्क्रूटनाइज हमारे रिजल्ट करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पूरे मुल्क में जो ये रिग्ड इलेक्शन हुए हैं इसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस के साथ जाऊंगा और मैं चैलेंज करूंगा ये सारे। इसके अलावा उन्होंने ईसीपी के ऑफिशियल्स को कहा कि आपने जो इतना भद्दा किस्म का ये जो इलेक्शन कराया उसके ऊपर आपको रिजाइन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो आज एक पीटीआई के खेमे से खबर आई है, क्योंकि उन्होंने आज अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने थे, तो बैरिस्टर गौर खान जो हैं उनको अनअपोज्ड पीटीआई का चेयरमैन चुना गया है, और ये पहली बार हुआ है कि 2 दफा उनको चेयरमैन के ऑफिस में के लिए चुना गया है। इसके साथ साथ उमर अयूब को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनको पीटीआई का पंजाब प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी जो हैं वो बड़े भड़के हुए थे, वो जाहिर है कि अपनी वो यात्रा पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अपनी बहन के साथ थे आज प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, और ये पहुंचे जिस वक्त मुरादाबाद में थ्रू संभल। तो इन्होंने कहा जी कि ये जो छोटी इंडस्ट्री है इसको बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, अलीगढ़ के जो छोटे जो आर्टिस्ट हैं उनको खराब किया जा रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट जो है चीप किस्म के चाइनीज फ्लड जो गुड्स है उससे फ्लड हुई हुई है, लेकिन इसका फायदा चूंकि बड़े रिच कॉरपोरेट्स को जाता है तो इसलिए वो कर रहे हैं। यूपी के जो कांग्रेस है के जो हेड हैं उन्होंने भी आज एक्स के ऊपर लिखा कि ये यात्रा जो है एक मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी और हार्मनी दे रही है, और लोग याद रखेंगे आने वाली जनरेशन के जिन लोगों ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इंटेग्रिटी को बर्बाद किया तो कांग्रेस ने उसके खिलाफ यात्रा निकाली और उसको रोका। इसके साथ साथ जो राहुल गांधी जी हैं उनकी बातचीत जो एसपी के चीफ अखिलेश यादव से हो रही थी तो उन्होंने भी यात्रा को आगरा में ज्वाइन किया था और अब इनकी जो लोकसभा की इलेक्शन आने वाली है उसके अंदर ये यूपी के अंदर खासतौर पर मुस्लिम वोट जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करते हुए सीट शेयरिंग के ऊपर काम करेंगे। वहां पे जो जलसे से खिताब कर रहे थे राहुल गांधी जी तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि तुम अपना मोबाइल फोन कितने घंटे यूज करते हो तो उसने कहा जी 12 घंटे। गांधी जी ने कहा कि इसकी वजह यह है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर लोगों के पास काम रहेगा तो वो 12 घंटे मोबाइल नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा जी कि जो बड़े बिजनेसमैन है ये रील्स नहीं देखते हैं, रील्स एक बड़ा मशहूर ड्रामा है, वो कहते हैं जी वो नहीं देखते हैं, वो 24 घंटे मनी जो है यानी कि पैसा गिनने के लिए वो लगे हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि फार्मर्स जो हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही, वो मांगते हैं तो उनको कहा जाता है इनको शूट करो, यूथ जो है जब वो अपॉइंटमेंट्स मांगती है तो उनको रिफ्यूज किए जाते हैं, फॉर्मर गवर्नर जो है वो जब कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो उसको घर में सीबीआई की रेड पड़वाई जाती है। जाहिर है कि ये यहां पे जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर थे मलिक साहब उसकी बात ये कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं ऑपोजिशन लीडर्स के, तो जाहिर है कि इसमें वो कांग्रेस की बात कर रहे थे, और इंटरनेट जो है शट कर दिया जाता है, टीयर गैस फेंकी जाती है। तो ये जो है हम कहते हैं फिर जी कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर ये सब कुछ जो चल रहा है तो आप खुद सोचें कि ये कौन कर रहा है और ये कितना मुल्क के लिए अच्छा है। ठीक है जी, आज तक गार्डियन की एक खबर आई है और ये बहुत ही दिल दुखा देने वाली खबर है, मगर मुझे लगता है कि मोर और लेस ये तो एक रिपोर्ट है, शायद हमारे इंडिया पाकिस्तान में यही कुछ होता है। महाराज जी गार्डियन की इस खबर के मुताबिक तपस कुमार भंजा 66 इयर्स इनकी एज है, इनको अपॉइंट किया गया था टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस इन वेस्ट बंगाल्स ओवरक्राउडेड प्रिजन्स, जिसमें कि कहा जाता था कि जी औरतें जो हैं उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और अब्यूज किया जाता है बाय देयर मेल इनमेट्स। उसके ऊपर आज उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट जो है वो सामने लेकर आए हैं। वो कहते हैं जी कि 34 इयर्स पहले मैंने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और मैंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ बात की है, तकरीबन 1887 फीमेल्स जो हैं जो कि रखी गई हैं डिफरेंट प्रिजन्स में, उसमें से बहुत सारी औरतों से मैंने बात की जो वेस्ट बंगाल में हैं। तो वो कहते हैं जी कि जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग हैं, पावरफुल है, वेल्दी हैं, जब ये औरतें गुजर के ही वहां से जा रही होती हैं तो वो इनके ऊपर नंबर लगा लेते हैं और इनको सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बच्चों को उधर ही जन्म देती हैं प्रिजन्स के अंदर। इस वक्त जो है बेशुमार बच्चे जो हैं वो प्रिजन्स में अपनी माओं के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ा अफसोस है कि वेस्ट बंगाल की प्रिजन्स जो हैं उसके अंदर ये जो है बड़ी खराब प्रैक्टिस चल रही है और उसके ऊपर कोई भी जो है काम नहीं लिया जा रहा है। जब इनकी आज ये रिपोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है उन्होंने आज वेस्ट बंगाल की जो करेक्शनल सर्विसेज है उनको बुलाया और उनसे पूछा कि भाई ये क्या सारा माजरा है। उनके मुताबिक 62 बच्चे जो है वो प्रिजन्स में पैदा हुए बिटवीन जनवरी 2020 से लास्ट दिसंबर, और वो कहते हैं जी कि इतना ज्यादा ये खराब नहीं है मसला जितना कि बंजर जो सॉरी इन्होंने भंगा साहब ने जो है वो सारा बयान किया है। भंगा साहब कहते हैं जी कि सैकड़ों ही औरतों से मैंने बात की है तो उन्होंने कहा जी कि अब्यूज उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है जब ये औरतें जो हैं प्रिजन में से जो मेल वार्ड्स हैं उसमें से पास होके जाती हैं, क्योंकि यहां पे वेस्ट बंगाल में एक ही ऐसा प्रिजन है जो एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए है, बाकी जो है ऐसे प्रिजन हैं जहां पे के एक हिस्से में मर्दों को रखा हुआ है और दूसरे हिस्से में औरतों को, तो बहुत ज्यादा इनको अब्यूज किया जाता है। और वो कहते हैं जी कि ये बड़े बड़े जो प्रिजन के स्टाफ हैं इन सारों को हश मनी दी जाती है, यानी कि पैसे दिए जाते हैं कि तुमने बिल्कुल मुंह नहीं खोलना, खामोश रहो बिल्कुल इस मसले के ऊपर। तो वो कहते हैं जी तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आज कहा जी कि इसके ऊपर एक प्रोब बिठाए, तो अब कितने प्रिजन के ऊपर भी प्रोब बिठाएंगे ये ऐसे। और जनाब ये जो इंडियन रिजर्व सर्विसेज के ऑफिसर हैं समीर वानखड़े, अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान साहब का जो बेटा था आर्यन उसके ऊपर वो जो ड्रग्स का लेजली केस आया था जिसको पकड़ के वो ले गए थे और फिर वो बच्चा एक महीने रहा था जेल के अंदर, उसके ऊपर जो फाइनेंशियल जो इररेगुलरिटीज हैं और कहते हैं लेजली इसने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये इन्वॉल्व है, उसका आज कुछ इंटरव्यू लिया है। तो उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त आपके इंटरेक्शन शाहरुख खान साहब के साथ होते थे तो आपको वो क्या कहते थे, कहते हैं मुझे तो वैसे पता नहीं है शाहरुख खान कौन है। तो इंटरव्यू जब वाले ने पूछा कि आपको एक्चुअली नहीं पता कि शाहरुख खान कौन है, कहते हैं हाँ मैं कोई फिल्में विल्में नहीं देखता हूं लेकिन मुझे उसके ऊपर बेचारे पे तरस बड़ा आता था क्योंकि वो जो चैट्स हैं इनके बीच में वो लोगों ने आज जो इंटेलिजेंस सर्विस है उन्होंने वो जो है डी कोड की है जिसमें कि शाहरुख खान उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें बेग कर रहा हूं प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो क्योंकि इसके ऊपर मर्सी खाओ थोड़ा सा, एज अ बाप मैं तुम्हें बेग कर रहा हूं ये जेल में नहीं रह सकेगा, एज अ ह्यूमन बींग जो है ये टूट जाएगा। कहते हैं हाँ एज अ बाप तो मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आया, बहरहाल मुझे पता नहीं है कि ये कौन है। तो वो इंटरव्यू ने कहा कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो है। उस पे समीर वानखड़े ने कहा कि ये मेरा हीरो नहीं है और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है, मैं तो असल हीरो जो है उनके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं करूंगा, जैसे कि मोदी जी हैं या छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो ये सारी जनाब आज जो है बातचीत सामने आई। और जनाब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो हैं उनके घर पहला बच्चा आने वाला है, सितंबर के अंदर आ सकता है। और इसके अंदर लोगों ने आज उनको बहुत सारी बधाइयां दी, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आज डाली हैं और लोगों ने इनको जो है फिल्म इंडस्ट्री से जाहिर है कि बहुत सारी बधाइयां दी हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे शी इज इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर। और जनाब र्यूमर्स आ रहे हैं कि जस्टिन बीबर और हेली क्या है बीबर इनके बीच में, की जो वाइफ है हेली उनके बीच में शायद कुछ ट्रबल्स चल रही हैं। ये ट्रबल्स की बात उस वक्त सामने आई जब हेली के जो फादर हैं स्टीफन बॉल्डविन उन्होंने एक गाना जो है आई कुड सिंग ऑफ योर लव फॉर एवर वो जो है वो डाला है, जिसमें कि बैकग्राउंड में जस्टिन जो है वो देखा जा रहा है। तो फैंस ने उसके वीडियो के ऊपर तो ज्यादा रिएक्शन नहीं शो किया, लेकिन जो उसके ऊपर एक कैप्शन थी उसके ऊपर उन्होंने काफी शोर मचाया, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था कि क्रिश्चियंस प्लीज व्हेन यू थिंक ऑफ जस्टिन एंड हेली प्लीज ऑफर योर प्रेयर्स फॉर देम टू हैव विजडम प्रोटेक्शन एंड मे गॉड ड्रॉ देम क्लोजर। तो लोगों ने कहा क्या चक्कर है ये, इनके बीच में लड़ाई है या क्या है। और जनाब हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगाई हैं बाय डिसिप्लिनरी एंड एथिक्स कमेटी ऑफ सऊदी फुटबॉल फेडरेशन। ये मैच हो रहा था अल नसर के बीच में और अल शबाब के बीच में, जब ये 3-2 से ये जीत रहा था अल नसर और वहां पे जो है आवाजें आनी शुरू हो गई मेस्सी 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 को लोग याद कर रहे थे, तो उन्होंने कोई बड़ा गंदा सा इशारा किया। और वैसे तो ये गोल्डन बूट रैंकिंग में 22 जो गोल्स हैं उनसे लीड कर रहे हैं सीजन में, लेकिन लोगों ने कहा कि नोबडी इज अबव लॉ है जी। तो इनको फाइन किया गया है 10,000 सऊदी रियाल के लिए बाय सऊदी फुटबॉल फेडरेशन और एडिशनल सऊदी रियाल 20,000 ये देंगे अल शबाब को, क्योंकि उसने कंप्लेंट डाली थी इनके अगेंस्ट। और जनाब जुवेंटस के जो मिडफील्डर हैं पॉल पोग्बा 30 ईयर्स अब उनकी बेचारों की एज हो गई है और उनके ऊपर जो है ये आया है कि 4 ईयर्स का उनको सस्पेंशन दिया जा रहा है फ्रॉम फुटबॉल, क्योंकि इन्होंने जो इनका ड्रग टेस्ट हुआ था उसके अंदर ये पॉजिटिव आए थे। इटली की जो एंटी डोपिंग कोर्ट थी उसके अंदर जो है जब मामला गया तो उसने इनको पीनलाइज किया था अंडर वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोर्ट और उन्होंने कहा था कि तुम पॉजिटिव आए हो टेस्टोस्टेरोन के लिए। ये सितंबर में हुआ था जब इनका मैच जो था वो था यूवेंटस का मैच था यूनिटस के अगेंस्ट ऑन अगस्त 20th और बातचीत जो है वो सारी सामने सितंबर में आई थी। तो इनको कहा गया था कि आप प्ली बार्गन ले लें 2 ईयर का बैन अगर आप मान जाते हैं, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं। और इनकी लीगल टीम ने भी कहा कि इसने एक्सीडेंटली कंज्यूम किया था तो ये अपनी गलती क्यों मांगे। लेकिन अगर पोग्बा ने जो ये अपील डाली है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट, अगर ये इनकी अपील अनसक्सेसफुल रही तो फिर जो इनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया है, इसका मतलब है कि ये ओनली ही वुड बी एबल टू रिटर्न बाय एज 35, जबकि मोस्ट ऑफ द जो फुटबॉलर्स हैं वो रिटायर हो रहे होते हैं। ठीक है जी, एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, उसके बाद हम जाएंगे अपने पीएसएल के स्पेशल सेगमेंट की तरफ विद जीशान। पीएसएल का जो आज का मैच था नेशनल स्टेडियम कराची में क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स के बीच में, जो क्वेटा ने कराची को हराया है 5 विकेट से, किंग्स ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया था 165 for 8। ग्लेडिएटर्स जो है उन्होंने अपना चेज किया ये जो टारगेट था, स्टीफन रदरफोर्ड जो है उनका अनबीटन 58 for 31 balls रहा और ये गेम जो थी सुपर ओवर में गई थी जिसमें कि रदरफोर्ड ने बाउंड्री मार के विक्ट्री ली थी क्वेटा के लिए और उसकी वजह से अब क्वेटा जो है वो अब सेकंड स्पॉट पे भी आ गया। रैंकिंग्स क्या है पीएसएल में और क्या चल रहा है, आने वाले मैचेस में आप क्या देख सकते हैं, हम छोटी सी ब्रेक के बाद जब जाएंगे पीएसएल स्पेशल सेगमेंट की तरफ विद जीशान उसमें हम आपको डिटेल देंगे। सो थैंक यू।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो 110 ग्रिल एंड मोर।
लैबे आ गया एक और खर्चा थे स्यापा।
खर्चा नहीं है दावत है, मजे मजे के खाने हैं, बिरयानीज हैं, रैप्स हैं, बिहारी रैप्स हैं, कॉम्बोज हैं, चिकन बिरयानी, नॉन वेजिटेबल मीट करीज आपको मिलते हैं, वेजिटेबल करीज है, नॉन्स में बहुत स्पेशल है, इंतहाई लजीज खाना, बेहतरीन कस्टमर सर्विस, यू मस्ट विजिट वंस
110 ग्रिल एंड मोर 905-858-3003 905-858-3003 5980 Churchill Meadows Boulevard in Mississauga।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडीज और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA. तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666. टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स.
पाई सस्ता लाला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला.
ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी फ्रूट्स दाला सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा.
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट दाला सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप. नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे प्लेटां बाटियां सब कुछ मिलदा. साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है. एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ.
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है.
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है.
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर. गाड़ी की नब्ज देख कर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे.
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, 4 विंग, कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं. बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी. इसकी मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800.
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब.
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम.
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल.
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान. लेजर टूथ व्हाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव.
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100. कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री. डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा.
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉस और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए. मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, PR रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ. kanemsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं. हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियात मौजूद है.
वेलकम बैक अगेन एंड अली जफर की आवाज में एंड आई एम अ बेग दोनों की आवाज में खुल के खेल. ये गीत जो है PSL का इस दफा का गीत है ये, اور یہ آپ نے سماعت فرمایا. اور اب چلیں گے پچھلے ہفتے کیا ہوا پی ایس ایل میں, پورے پی ایس ایل کی رپورٹ لاسٹ ویک کی, اس سے پہلے کی ویک کی تو آپ بتا دیے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اپر شازیہ ملک جی اور اس کے ساتھ جناب ذیشان احمد صاحب.
السلام علیکم و رحمۃ
اللہ. ٹھیک ہوں ذیشان؟ یہ تو مجھے وہ یاد آ گیا شکیرا کا وکا وکا, یہ گانا اس سے تو نہیں ہے جو انسپائرڈ ہے؟
نہیں نہیں, میرے ان کی جو ارلی دفعہ جو بھی میوزک بناتے ہیں ان کا اپنا اوریجنل ہوتا ہے, اور ہر قسم کی جو ہے وہ ہر دفعہ ایک اچھی ٹیون لے کے آتے ہیں. اور ایک جب بھی پی ایس ایل بیرک میں ہی ہم سے بات ہو رہی تھی, ہم لوگ بات کر رہے ہیں, جب بھی پی ایس ایل آتا تو علی ظفر کا نام ضرور آتا ہے. وہ پچھلے 4-5 سال سے جو غائب تھے وہ, اور اسکینڈل کا بھی حصہ رہے, تو اس وجہ سے اس کو نظر انداز کیا گیا. لیکن اس دفعہ پی ایس ایل نے جو ہے علی ظفر کو,
اچھا اس ہفتے کی پورے کی آپ کہانی سنائیں. ویسے تو ہم یہ فرائیڈے کو کرتے ہیں لیکن اب کل تو ہمارا فنڈ ریزر ہے, تو بتائیں کہ اس ہفتے میں جتنے میچز ہوئے ہیں کیا کیا ہوئے ہیں, پوائنٹ ٹیبل کہاں پہ کھڑا ہے, کیا چل رہا ہے سارا کچھ.
اچھا سب سے پہلے ہم جو نا ہیڈ لائنس پہ چلتے ہیں. جو ابھی اسامہ میر نے ابھی بہت اچھے بولنگ کی ہے, انہوں نے جو بیسٹ فگر ہے پی ایس ایل میں, جو ہمارے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسٹ فگر اسی سال کی جو ہے عارف یعقوب کی تھی, یعنی کہ جو 3-4 دن پہلے جو میچ ہوا تھا پشاور اکیڈمی کا, ان میں انہوں نے جو ہے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا. تو اسامہ میر نے اب تک 40 رن دے کر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, تو یہ پی ایس ایل کی بیسٹ فگر بولنگ ہے. اچھا موسٹ وکٹس میں حسن علی کراچی کنگز کا حصہ ہے, تو حسن علی نے 100 وکٹس جو ہے کمپلیٹ کر لیے.
حسن علی ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے؟
نہیں نہیں, تو وہاب ریاض اس کو لیڈ کر رہے ہیں 113 وکٹوں کے ساتھ. حسن علی 100 پر ہیں. اور
وہاب ریاض بھی کھیل رہے
ہیں اس دفعہ؟ نہیں.
اچھا نہیں,
اب تو وہ پی سی میں,
وہ تو منسٹر ہو گئے
نا, پی سی بی کا جو عہدہ انہوں نے لیا, تو یہ ان کو جو ہے پوسٹ چھوڑنی پڑی, یعنی کہ پی ایس ایل کو انہوں نے خیر بار کہنا پڑا. شاہین آفریدی 3rd نمبر پہ 98 وکٹوں کے ساتھ, اور 83 جو ہے شاداب خان کے حصے میں آئی. بات کرتے ہیں بابر اعظم کی. بابر اعظم لاہور میں میچ تھا پشاور دھامی کے لیے, وہ کھیل رہے تھے, لیکن کراؤڈ کیا کہہ رہا تھا, بابر اعظم بابر اعظم بابر اعظم بابر اعظم. اس کی بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں بابر اعظم نے ساری ٹیموں کے درمیان جو ہے جو رنز بنائے سب سے زیادہ وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف بنایا ہے 754 رن. اچھا پشاور دھامی کے خلاف انہوں نے 646 رن بنایا. اب پشاور کا یہ حصہ ہے, لیکن اس سے پہلے جو فرنچائز کے لیے کھیلتے تھے انہوں نے سب سے دوسرے نمبر پر جو ہے ظالمی کے لیے بنایا. پھر 610 رن لاہور کلندرز کے لیے, پھر کوئٹہ گلیٹرز, ملتان کراچی کنگز, ملتان سلطان اور کراچی کنگز شامل ہے اس میں. اچھا بات کر لیتے ہیں پچھلے میچز میں جو ہوئے ہیں. سٹرڈے کو جو میچز ہوئے تھے لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان, میچ نمبر 10 اس میں کراچی کنگز نے لاہور کو ہرایا 2 وکٹوں سے. پھر اس کے بعد سنڈے کو یعنی کہ 11th میچ ہوا تھا ملتان سلطان اور کوئٹہ گلیڈرز کے درمیان, ملتان سلطان نے کوئٹہ گلیڈرز کو 13 رن سے ہرایا. اسی دن دوسرا میچ ہوا تھا 12th میچ پشاور دھامی اور لاہور کلندرز کے درمیان, پشاور دھامی نے یہ میچ 8 رن سے جیت لیا تھا. منڈے کو جو میچ ہوا تھا پشاور دھامی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان, دھامی نے وہ میچ 8 رن سے جیت لیا تھا. اور منگل کو جو میچ ہوا تھا ملتان سلطان اور لاہور کلندرز کے درمیان, یہ ملتان سلطان نے 60 رن سے جیت لیا تھا. کل جو میچ ہوا تھا کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ, یہ وہی وینیو ہے جہاں پہ جو شفٹ ہو گیا ہے کراچی اور پنڈی اسٹیڈیم میں, اس کی بھی ہم بات کریں گے. کراچی اسلام آباد نے یہ میچ جو ہے 7 وکٹوں سے جیت لیا, یعنی کہ کراچی کو ہرا دیا تھا. آج ایک بڑا زبردست میچ ہوا, بالکل نیل بائٹنگ میچ ہوا کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈرز کے درمیان.
سپر اوور پہ گیا یہ,
سپر نہیں سپر اوور پہ نہیں گیا مجھ بھائی, ایک بال پہ 1 رن چاہیے تھا, جیسے ایک اوور میں 15 رن چاہیے تھے. پھر انہوں نے چھکا اور چوکا لگایا, پھر انہوں نے 2 بال مس کرائی, پھر ایک بال پہ انہوں نے
بولنگ بند کرا.
بولنگ انور علی کرا رہے تھے جی جی, جو کوئٹہ کے لیے کھیلتے تھے پچھلے سیزن میں, اب انہوں نے کراچی کنگز کا سامنا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں, تو وہ آج بولنگ کرا, بہت اچھی بولنگ کی اگر دیکھا جائے تو. لیکن سامنے آپ کے جو ہے شیفن ردرفورڈ تھے اور اکیل حسین, ویسٹ انڈین فنیشر بیسٹ فنیشر, جب کریز میں ہو تو کوئی بھی بالر ہو یا کوئی بھی گراؤنڈ ہو وہ فنش کر کے ہی چھوڑتے ہیں. تو ایک بڑا کانٹے کا اچھا مقابلہ رہا آج کوئٹہ گلیڈرز اور کراچی کے درمیان. کل آرام دہ ہے ٹھیک ہے. کل آرام کا دن ہے, ریسٹ ڈے ہے, تو کوئی میچ نہیں ہے. سنڈے کو دو میچز کھیلے جائیں گے, جو پہلا میچ ہوگا راول پنڈی میں صبح 9 بجے شروع ہوگا, لاہور کلنگ اور پشاور زلمی کے درمیان. دوسرا میچ ہوگا سنڈے کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان, اور یہ میچ ہوگا ہماری رات کو. سنڈے کو ایک میچ ہے کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان, اور یہ میچ کراچی میں کھیلا جائے گا.
اچھا ذرا پوائنٹس ٹیبل بتا دیں کہ کون جو ٹیم ہے اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, تاکہ ہمیں ذرا پتہ چل جائے کہ اب آگے پریڈکشنز کیا کی جائے.
اچھا ایک سوال,
کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ مجھ میں یہ پریڈکشنز تو ہمیشہ غلط ہوتی ہیں. اچھا مجھے پہلے نہیں دیتے.
دفاعی چیمپئن کون ہے اس دفعہ؟
وہ تو وہ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ,
لاہور کلندر. اچھا اب آپ ٹی وی پہ دیکھیں لاہور کلندر کہاں کھڑا ہے.
لاہور کلندر باہر نہیں ہوا ابھی,
آلموسٹ باہر ہے. مجھ میں وہ اگلی بات میں یہی کہنے والا ہوں, دیکھیں لاہور کلندر 6 میچز کھیلے اور 6 رہا, یعنی کہ 6 کے 6 میچ جو ہے وہ ہار چکے ہیں. اچھا بات کرتے ہیں پوائنٹ سیڈل کے, ملتان سلطان ٹاپ پر ہیں, 6 میچز کھیلے ہیں, 5 جیتے ہیں, 1 ہارے ہیں, اور ان کے پوائنٹس کی تعداد ہے 10. کوئٹہ گلیڈیٹرز 5 میچز کھیلے ہیں, 4 انہوں نے جیتے ہیں, 1 ہارے ہیں, اور ان کے پوائنٹس کی تعداد ہے 8. پشاور زلمی 5 میچز کھیلے ہیں, 3 جیتے ہیں, 2 ہارے ہیں, اور ان کے پوائنٹس ہیں 6. اسلام آباد یونائیٹڈ 5 کھیلے ہیں, 2 جیتے ہیں, 3 ہارے ہیں, 4 پوائنٹس کے ساتھ. کراچی کنگز 5 میچز کھیلے ہیں, 2 جیتے ہیں, 3 ہارے ہیں, اور 4 پوائنٹس. لاہور کلندر 6 میچز کھیلے ہیں اور 6 ہار گئے. تو آلموسٹ لگ رہا ہے کہ لاہور کلندر اس کمپٹیشن سے باہر ہو گئے, کہ 3 میچز اور باقی ہیں ان کے. اگر تینوں وہ جیت جاتے تو ان کے پوائنٹس کی تعداد ہوگی 6, اور اس بیس پر بھی جو ہے ٹاپ جو 4 ہوں گے وہ پلے آف میں کھیلیں گی. جی سر.
اچھا جی, اچھا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ذیشان, ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ تم کرکٹ کے بارے میں بڑا جانتے ہو.
جی جی.
یہ جب سے یہ کرانچی ہمارے کے اندر گئے ہیں یہ میچز, یہ اتنا زیادہ کراؤڈ کم کیوں ہو گیا بھائی؟ یہ کیا چکر ہے؟ چکر کیا ہے؟
ایک تو وہ ہم پچھلے میچ میں بات کر رہے ہیں بائیک آؤٹ کو, جو سیزن لوگوں نے جو بائیک آؤٹ جو کیا ہے سرائے پروڈکٹس کا, ایک تو وہ اثر ہے. دوسرا جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں کراچی کا اسکواڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کراچی کا اسکواڈ میں کوئی ایک بھی ایسا الیکٹریفائنگ پلیئر نہیں ہے جو پاکستانی ٹی ٹوینٹی میں کھیل رہا ہے. یعنی سپر اسٹار کی اگر میں بات کروں, رضوان, بابر اعظم, شاداب, شاہین شاہ افریدی, حارس رہو, زمان خان, یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے پلیئر ہیں جو پاکستان میں ٹی ٹوینٹی کا حصہ, دیکھیں کوئی بھی اس میں جو ہے ایک سپر اسٹار شامل نہیں. آلدو کہ شعیب ملک اور شان مسعود اس میں
پولارڈ ہے,
لیکن پولارڈ بھی دیکھیں وہ
اتنا پرفارم نہیں کر پا رہا.
پرفارم نہیں, پرفارم کی بات نہیں, لیکن ان کو بہت ایکسپیرینس ہوگی.
ایک ہی انٹرنیشنل پلیئر ہمارے پاس ہے,
تبریز ساؤتھ افریقن آرتھوڈاکس بالر ہیں, اور انور علی ہیں, نواز ہیں جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ کھیلتے آئے ہیں, اور میر حمزہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کا. تو بتانے کا مقصد یہ کوئی ایک سپر اسٹار موجود نہیں جو پاکستان کی ٹیم کا بھی حصہ ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے. اچھا اب دوسرے ہم بات کرتے ہیں اسکواڈ کی, میں نے بات کی تھی تو آج کا جو میچ ہوا اس کی تو چند ہائی لائٹ ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں. میچ کے دوران جو آپ دیکھیں گے ایم ٹی جو ہے آپ کو سیٹس نظر آئیں گی, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوور ہے یا بیک سائڈ پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹس جو ہے خالی تھی. اچھا اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کم سے کم ٹکٹ کتنے کا ہے؟ 600 روپے کا, اور میکسیمم جو ٹکٹ ہے وہ 5000 روپے کا.
اچھا
ٹھیک ہے نا, اگر آپ 600 روپے کا ٹکٹ لیتے ہیں پھر نہ وہاں پہ پانی کی سہولت ہے, آپ کو پانی آپ نہیں لے جا سکتے, ٹھیک ہے, کھانا آپ کو وہاں پہ نہیں لے جا سکتے اور نہ ہی اویلیبل ہے, اور باتھروم کی بھی سروس جو ہے اویلیبل نہیں ہے. تو یہ 2-3 جو وجوہات ہیں یہ جو ہے باعث بنی.
اچھا اس وقت پہلے سے سوچا چاہیے تھا کھانا پینا کے سٹالز یا یہ باتھ روم کے سٹالز وغیرہ, تو وہ تو لگانے چاہیے تھے ان کو وہاں پر.
جی 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 بالکل, وہ آئی تھنک بہت مس مینجمنٹ. مجھ میں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا جس دوران میچ ہو رہا تھا تو میں تھوڑا سا سوچا کہ اچھا اس کو گوگل میپ پہ جا کے دیکھا جائے کہ ابھی اسٹیڈیم کے آس پاس جو ہے کیا ٹریفک ہے. تو جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 8:30 بجے جو میں جو اس کی میں نے تصویر لی ہے, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں شاید جی سیوک سینٹر ماجد جو ہے شاید واقف ہو. سیوک سینٹر جو ہے بہت ہب ہے, کمرشل ایریا ہے, بہت سارے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں. ہمارے کے الیکٹرکس جو ہیں کراچی الیکٹرکس, ان کا آفس بھی یہی موجود ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انہوں نے روڈ جو ہے پوری بند کی ہوئی ہے, سیوک سینٹر نیشنل اسٹیڈیم اور کار ساز روڈ تک جو آ رہی ہے فلائی اوور تک, فلائی اوور اوپن ہے تاکہ آپ جو ہے کار ساز روڈ تک آپ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو سروس روڈ ہوتی ہے وہ انہوں نے پوری بند کی تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا اب فار ایگزامپل میں سیوک سینٹر میں ہوں کراچی, اور یہ دیکھیں اگر مجھے نیشنل اسٹیڈیم جانا ہے تو مجھے گھوم کے جانا پڑے گا, اور اس کا جو مجمع جو رقبہ ہے نا صرف 1.3 کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے نا.
کتنی دیر لگے گی؟
15 منٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا 15 منٹ ایک گاڑی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ساری گاڑیاں, تو یہ بہت بڑی جو ہے مجھے ٹریفک کا اس میں نظر آیا آنسر کہ ہو سکتا ہے کہ ٹریفک
بیڈ پلاننگ.
اچھا ایک اور میں ایک تصویر دکھاتا ہوں, چار اسٹیڈیم جاؤ, چار میچز ہو رہے ہیں جس اسٹیڈیم میں, لاہور میں, ملتان میں. اچھا اب دیکھیں ملتان اسٹیڈیم, ٹھیک ہے نا, بالکل کھلا کوشیدہ ہے, چھت جو ہے چھوٹی ہے, باؤنڈری جو ہے غریب ہے اسٹینڈ کے. پھر آپ لاہور کا دیکھیں, ٹھیک ہے نا, اسٹینڈ بہت قریب ہے باؤنڈری, آپ پلیئرس کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چھتیں جو ہے پوری کور نہیں ہے. اور اگر ہم بات کریں تو پنڈی اسٹیڈیم کی, تو پنڈی اسٹیڈیم میں تھوڑا سا آپ کو دکھ رہا ہے کہ اس سال جیسے انگلینڈ یا ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں, اس کی چھتیں نہیں ہیں, بالکل جو اسٹینڈ ہے باؤنڈری لائن کے بالکل قریب ہے. اگر ہم بات کریں کراچی کی, دیکھیں کراچی کا ایک تو اسٹینڈ ہے بالکل کورڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ میاداد انکلوجر جو لیتے ہیں یا ہنی موبائل انکلوجر لیتے ہیں جو سب سے ایکسپینسو ہے, آپ کو بال نظر نہیں آئے گی, ہوا میں آپ جائے گی نا آپ کو بال نظر نہیں آئے گی, تو آپ کو اس طرح سے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ چھت کی وجہ سے آپ کا ویو جو ہے نا بہت خراب ہوتا ہے.
اچھا
جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, میں اس میں جا چکا ہوں, اسٹینڈ کے آگے جو ہے نا تقریباً 20 فٹ کی جگہ ہے, اس کے بعد جو ہے نا 12 فٹ کی کیش کی طرح انہوں نے گرل لگائی ہوئی ہے پورے گراؤنڈ میں, اور پھر گرل کے بعد جو ہے اندر 35 فٹ ہے.
ٹھیک ہے نا.
اور جو یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ وی آئی پی میں تو یہ اسٹینڈ آپ کو نظر آئیں گے, تو اگر اسٹینڈ اگر ایک میرے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا, تو کسی پلیئر کو دیکھنا ہے یا ایکشن مجھے دیکھنا ہے تو وہ مجھے ڈسٹرب کرے گا, براؤن والا جو بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں اندھیرا بہت ہوتا ہے,
بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا.
تو میرے جو کزن سے دوست جاتے وہ کہتے ہیں یار ہمیں بڑا پریشانی کا سامنا ہوگا, ایک تو ٹریفک ہو گئی, پھر آپ جب گیٹ پہ آتے ہیں تو وہ کیو آر اسکیننگ جو ہے وہ پولیس والا, آپ کے پاس ڈیجیٹل ٹکٹ ہوتا ہے تو وہ تنگ کرتے ہیں آپ کو, اچھا کام نہیں کر رہا آپ کا ٹکٹ جعلی ہے ایکسپائر جو بھی ہے, اور پھر آپ کا ویونگ جو ہے نا اتنا جو ہے وہ پاورفل نہیں ہے, تو بہت سارے جو پارکنگ کا جو ہے بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ نے پارک کیا بیک سائڈ آف نیشنل اسٹیڈیم میں آپ نے پارک کیا, تو آپ کو تقریباً 3-3.5 کلومیٹر چل کے آنا پڑے گا, تو اگر آپ نے یہاں پارک کیے پورا آپ کو گھوم کے آنا پڑے گا, اور یہ جو ہے بہت ٹف ہو جاتا ہے فیملیز کے ساتھ, جو ہے نا بہت ٹف, اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ, اور تھوڑا سا بہت جو ہے نا کراچی والوں کے لیے تھوڑا سا مایوس کن جو ہے انہوں نے رکھا ہے اس کو, کہ
یہ اتھارٹیز کو پتا ہے اس بات کا,
بھائی ہونا تو چاہیے, لیکن
کب سے ہو رہے ہیں میچز یہاں پہ, کب سے ہو رہے ہیں؟
جی میچز ہو رہے ہیں, اور بس یہ کنٹینر
انٹرنس صرف ایک ہی رکھی ہے,
انٹرنس ہے چار, لیکن جو دوسرے انٹرنس ہے ایک مین انٹرنس جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا یہ فرنٹ پہ جو کراچی اسٹیڈیم لکھا ہوا ہے یہ مین انٹرنس ہے, اور اس کے جو پیچھے یا سائڈ میں جو انٹرنس ہے وہ اسٹوڈینٹس اور فیملیز کے لیے انہوں نے رکھی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے آ رہے ہیں تو آپ کو گھوم کے جانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, اگر آپ تو
کیونکہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بالکل اس کے وہ جو انٹرنس ہے اس کے پاس ہی آپ کو پارکنگ مل جائے, پتا نہیں پارکنگ کہاں ملے, تو پھر وہاں سے واک کر کے جانا ادھر تک.
جی جی
ہاں, تو یہ
اچھا چلیں, آپ نے آپ بائک پہ آ گئے یا ایک کار میں 5-6 لوگ آ گئے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ پارکنگ کا ایشو ہے, وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن جو آپ کو نہیں ملتی, 10-11 بجے کے بعد آپ کو پبلک ٹرانسپورٹیشن نہیں ملتی. اچھا آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کرائم ریٹس بھی کراچی میں بہت زیادہ ہے, اور جس ایریا میں ہے وہاں پہ ریزیڈینشیل ایریا نہیں ہے وہ اتنا زیادہ, تو اس کی وجہ سے جو ہے کراچی میں,
لیکن اس وقت تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہم نے بہت سارے جو ہے پولیس جو ہے اس کو لگایا ہوا اسٹیڈیم کے پاس, اور اس حفاظت کے لیے, اور کوئی اس طرح کے تاکہ ان ٹورڈز قسم کے وہ نہ ہوئے, ہزاروں ہی جو وہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں, اور وہ انہوں نے اس طرح اسپیسیفکلی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ کراچی کے جو خاص طور پہ میچز ہوں گے اس کے اندر ہم بہت زیادہ سیکورٹی کریں گے تاکہ لوگوں کو کوئی شکایت نہ آئے.
سیکورٹی تو ہوتی ہے شاید, لیکن ایک ہی چیز میں سوچا تھا کہ آج 7 بجے میچ شروع ہوں, आपको पता चल जाती है कि आपकी टिकट सेल नहीं हुई है, ठीक है ना, फोरकास्ट आपको पता चल जाती है ऑलरेडी। तो आप 2 बजे आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के लिए फ्री है,
हमने प्राइस कम कर दी है, प्राइस कम कर दी है, हमने कम कर दी है, 300 कर दी है, 300 कर दी है, 350-400 कर दी है, तो लोग काफी वहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं,
काफी हो तो सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर ये हो गया तो वहां पे जो है ना उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें जो है फिर हंगामा आराई भी हो सकती है, झड़प भी हो सकती है, और सच बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां पे मौजूद है, तो हम नहीं चाहते कोई बस बजी का वहां पे आंसर मौजूद हो, पीएसएल या मैच जो है रोकना पड़े।
ऐसा 25,000-30,000 लोग आके मैच आराम से देखते
हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है,
लड़बाजी वगैरह नहीं होती,
नहीं होती है, लेकिन कराची कराची
नहीं मिसमैनेजमेंट, खाली मिसमैनेजमेंट। अगर ये जो आपकी बात है, अगर 1:30-2 बजे अगर 7 बजे मैच शुरू होना है, अगर वो कह दें और अगर आपने 400 का भी किया, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू इवन बाय 400 का टिकट, ठीक है ना, कुछ ही लोग लेंगे, तो और ये जो सारी दुनिया के अंदर लाखों लोग आते हैं, खासतौर पर ये देखो ना सॉकर के मैचेस होते हैं जिस वक्त लाखों लोग, कतर देखो, कतर एक कराची के से भी, एक कराची तो खैर बहुत बड़ा शहर है, कराची के कस्बे जितना मुल्क है पूरा वो, उसमें देखें आप, उन्होंने इतना बड़ा इंटरनेशनल वो कराया, कैसे उन्होंने मैनेज किया है ना, रोड्स बनाई, आप देखें उनको कनेक्ट किया है यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, तो लोग क्या कर रहे थे, इतनी जबरदस्त रोड्स थी कि लोग सऊदी में रह रहे थे या यूएई में रह रहे थे और कतर में मैच देखने आ रहे थे, और फिर शाम को जा रहे थे, और फिर उसके आसपास भी कितना, और उनके वो देखें जरा जो उन्होंने स्टेडियम्स बनाए थे कितने जबरदस्त थे, कोई जो आप ऐसे कह रहे हैं कि जी ऐसे घूम के और गिर के और साइड पे ऐसे करके, किसी को देखना नहीं पड़ रहा था वो जब मैचेस चल रहे थे, और उनके अंदर वो जो स्टेडियम्स थे हर तरह की फैसिलिटी थी, प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज थी उनके लिए, तो वहां पे शावर्स भी थे और वो स्विम भी कर सकते थे और भी रिलैक्स भी कर सकते और सब कुछ, लोगों के लिए भी जो बाथरूम्स हैं, आप सोचें कि वहां पे मेरे कजन्स जो थे वो गए थे मैच देखने, मेरा भाई भी गया था फाइनल देखने के लिए, तो वो कहते हैं जी कि कॉन्स्टेंटली वो वहां पे सफाइयां हो रही हैं और कोई उसमें स्मेल नहीं है बाथरूम्स में, जहां पे लाखों बंदा आया है, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, या आपको पीसीबी जो है वो भी बड़ी रिच है कंपेयर टू ऑल द जो अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मुल्क के अंदर है, बड़ा पैसा है इनके पास, तो भाई और आपने पुलिस वाले इतने उधर लगा दिए, तो थोड़े से वो 2-4 जो है बंदे ज्यादा आप हायर कर लें कि आपके बाथरूम्स वगैरह साफ करें, लोग बाथरूम्स में जा सकें, कोई पानी जो है वो पानी एटलीस्ट जो है वो पी सकें या कुछ ऐसे। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल,
वॉशरूम का तो मस्ट है,
मस्ट है वॉशरूम का,
3 घंटे उसने खाना नहीं खाया है जिंदा रह सकता है वो, मगर
पानी पिए बगैर तो नहीं रह सकता,
मस्ट है ये उनको अपने स्टॉल, एंड दे कैन सेल दो स्टॉल्स,
बिल्कुल
दे कैन सेल दो स्टॉल्स, अगर उनको सेल्समैन की जरूरत है तो मैं जा सकता हूँ।
अच्छा निजी टीवी चैनल पे एक बहुत पॉपुलर शो आता है द पवेलियन के नाम से,
या,
अच्छा पवेलियन टीम जो है ना, वो उनका भी रोना था आज कराची के नेसरेडे में,
अच्छा
अब उनका रोना क्या था,
फखरे आलम और वो वसीम अकरम,
शोएब मलिक तो खेल रहे हैं पीएसएल, तो अभी जो पवेलियन का हिस्सा है वो फखरे आलम, वसीम अकरम, मिसबाउल हक और असल अली, तो उन्होंने एक पैगाम भेजा,
मोइन भी होते हैं ना उसके अंदर,
नहीं मोइन खान अभी वो उनका कोचिंग स्टाफ
है
तो इसलिए अभी वो नहीं है, तो ये सुनते हैं और देखते हैं फिर आते हैं वापस, ठीक है ना।
भाई दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हमने जाना था आज मैच देखने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची, मगर स्टूडियो से जब हम निकले उसके बाद जो हम पे बीती है उसके बारे में हम क्या ही बता सकते हैं। स्किट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैपेंड नाउ देयर?
इट वाज अ नाइटमेयर। अब मुझे समझ आ गई है कि कराची में लोग क्यों नहीं जा रहे मैच देखने, हम 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे और फिर यू टर्न भी 1.5 घंटे में वापस आ गए स्टूडियो, ग्राउंड नहीं पहुंच सके। हमारा बेस्ट तरीका है कि जितने प्रॉब्लम है उसे कंटेनर ला रहे।
आई नो, आई मीन इट्स जस्ट रिडिकुलस दैट वी वेंट ऑल द वे एंड वी कुडंट गेट इन, और ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था वसीम भाई कि अगर हम नहीं पहुंच सके तो दूसरे लोग कैसे पहुंच सकेंगे, एंड वी हैड द गाड़ी का स्टिकर, एक्सेस, दिस एट दी अदर, वी जस्ट कुडंट गेट एनीवेयर क्लोज टू द ग्राउंड, टू द नेशनल स्टेडियम। ऑल्सो लुक एट द अमाउंट ऑफ इनकन्वीनियंस कॉज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ कराची, जो वो है। सो बेसिकली हमारी गुजारिश ये होगी कराची ट्रैफिक पुलिस वालों से, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं लोकल इंतजामिया से, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यू गाइस गॉट टू रियली सॉर्ट दिस आउट। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीजंस वी आर नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द स्टेडियम। व्हाट डू यू थिंक, स्किट?
डू आई एग्री विद यू, लाइक आई सेड अर्ली ऑन, अब समझ आ रही है कि लोग क्यों नहीं जा सकते। हम नहीं पहुंच पाए स्टेडियम के पास, हम वो हसन स्क्वायर से ही वापस उधर ट्रैफिक में फंसे रहे हैं कि आगे भी कंटेनर लगे हुए हैं। कंटेनर इज नॉट दी आंसर। रूट्स पहले बताएं, रेडियो वालों को बताएं, टीवी वालों को बताएं, वो अनाउंस करें, मैसेजेस आए कि ये रूट खुला है, ये बंद है, बट दैट्स नॉट हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो क्राउड इन कराची।
तो देखें फखर आलम ने जो पवेलियन की टीम ने उन्होंने भी यही पॉइंट रेस किया है, हालांकि उनका हक बनता पहले मैच देखने का, लेकिन उनकी टीम भी नहीं जा सकी। उन्होंने ये कहा कि वो ट्रैफिक का शिकार है, ट्रैफिक में फंसे रहे, कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं पता था उनको, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है किसी को इतला नहीं किया था, तो ये थोड़ी सी वजह रही। लेकिन लेट्स सी क्या हो सकता है।
लेकिन पिछले सालों में तो जब वो था रमीज राजा था तब तो कभी कराची से ऐसी नहीं आई शिकायत, तो कराची में काफी क्राउड भी रहता था
जी।
तो ये इस दफा अचानक से क्या हो गया है?
आई थिंक इन्फ्लेशन भी हो सकती है, फिर बायकॉट भी चल रहा है, और फिर वो मैंने बताया कि थोड़ी
मगर मेन चीज जो है वो
ट्रैफिक भी है। जी जी। अब आपका जो वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है वो 10 बजे खत्म होता है, ठीक है ना, 10 बजे तक आपका मैच खत्म हो जाता है, तो हाउ यू कैन गेट टू द मैच, राइट? एक वो भी एक फैक्टर है। एक दो बजे आप जो है मार्केट्स खुलती है, या मैं सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं, लेकिन जो मार्केट्स वगैरह वहाँ पे खुलती है वो 1-2 बजे के बाद खुलती है, फिर बंद होना वो शुरू होती है 8:30-9 बजे तक। अगर वो 8:30-9 बजे तक मार्केट बंद करके जाते हैं मैच देखने के लिए तो वो कैसे जाएंगे? तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा 15-20 ओवर हो गए थे एक इनिंग के, तो उसके बाद पब्लिक ने उसका रोक किया था। इस बात है कि थोड़ा ट्रैफिक स्लो हुआ था, या उनके घर वाले आ गए थे उनको लेने के लिए, उनके साथ वो चले गए थे। लेकिन होपफुली संडे को मैच है कराची का, कराची में तो एक अच्छा क्राउड हमें देखने का इंशाल्लाह जरूर मिलेगा।
चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच निशान, बहुत जबरदस्त आपने सारा जो पूरे वीक का जो प्रीव्यू था वो दिया था, और नेक्स्ट वीक हम जो है फिर से आप जो रहते, आज तो बड़ा मजा आया आपका, आपने बड़े जबरदस्त वो ग्राफिक्स और चीजें और वो सारा कुछ और जो है खासतौर पर ये जो पवेलियन की टीम के साथ हमारी मुलाकात हमने कराई है बड़ी जबरदस्त थी, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक आप और इस तरह के अच्छे कोई मजे की चीजें लेकर आएंगे। आज मैंने भी कुछ ट्रेंड्स देखे थे उसके ऊपर ट्विटर पे, वो मैं लाना चाहती थी, बट आई थॉट कि अब आप कुछ प्रिपेयर करके ला रहे हैं फिर टाइम नहीं होगा वो करने के लिए, वरना बहुत सारी शिकायतें जो थी आज ट्विटर के ऊपर भी थी कि भाई हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपने कहा ना कि वो जब आप दिखा रहे थे ग्राफिक तो आपने कहा कि ये लोग जो है ये बहुत कम बैठे हुए हैं, लेकिन जो ट्विटर पर आज ट्रेंड चल रहा था उसमें वो लोग कह रहे थे कि हम पहुंच नहीं पा रहे
जी,
तो वो बहुत ज्यादा आज ट्रेंडिंग था उसके ऊपर कराची के ऊपर, तो मैंने कहा शायद कुछ दिखाऊं, फिर मैंने कहा कि आप शायद वो लाएंगे।
अच्छा, आपको याद है मैं पिछले साल में पाकिस्तान गया था, तो जिस दिन मैंने लैंड किया था उस दिन पहला मैच था कराची में।
अच्छा, अच्छा।
तो जब मेरे चाचा अंकल आए लेने के लिए तो उनको काफी टाइम लगा आने के लिए, उन्होंने कहा बहुत ट्रैफिक है क्योंकि PSL शुरू हो गया हसन स्क्वायर की, वो जो बात कर रहे हैं सिविल सेंटर से वो एयरपोर्ट आपको रोड लेके जाती है, तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इसलिए जो ना हम फंस गए थे, तो इसलिए मुझे देर हो गई, हालांकि मैं बाहर खड़ा था अपने सामान के साथ एयरपोर्ट पे, तो वो नहीं आए थे, हालांकि जुमे का दिन था, उसमें जुमे के नमाज के बाद जो मैच शुरू हुआ था, तो कह रहे हैं कि PSL शुरू हो गया है, इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं और मुझे जो है काफी टाइम लगा एयरपोर्ट आने में, तो एक दास्तान ये भी थी।
तुम गए फिर उसके बाद देखने के लिए मैच के? नहीं, तुम घर गए?
नहीं नहीं, मैंने कहा उसमें दो तीन, एक तो वो जो था, एक तो उन्होंने कोरोना का चल रहा था पीस को उन्होंने जो ख्याल किया होता, और फिर सिविल सेंटर पे आपने शटल सर्विसेज थी, आप जो है ना गाड़ी लेके जा सकते हैं ना आप वॉक करके साथ जा सकते हैं, द ओनली वे टू गेट इन स्टेडियम वॉज शटल बस।
ये तो कितनी अच्छी बात, इस दफा इन्होंने शुरू की,
इस दफा इन्होंने नहीं किया, आई थिंक वो उनका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा, तो जैसे इंशाल्लाह हमें जो है क्राउड देखने को मिलेगा।
थैंक यू सो मच जीशान, एंड
थैंक यू
सो मच, एंड अगले जुमे को फिर अब से लेके जो नेक्स्ट जुमे तक की जो कहानियां होंगी PSL की वो जीशान लेके आएंगे हमारे लिए, एंड अब मैं ले चलता हूँ आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान। जीशान भाग दौड़ के अपने कमरे में जाएंगे और वहां से फिर अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। कल तक के लिए इजाजत,
थैंक यू मच भाई, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
You are listening to WTUR 770 AM, Youngstown, Toronto.